शांति, ओम शांति। सत गुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज सत गुरुवार के दिन सत गुरु बाबा ने हम बच्चों को बहुत सावधान किया है। किससे सावधान किया है? माया से। बाबा कहते हैं माया बहुत चलाक है, माया बहुत दुस्तर है। क्या क्या शब्द बाबा के लिए, माया के लिए बाबा कहते हैं। आज बाबा ने कहा माया बड़ी धोखेबाज है। तो धोखेबाज कैसे है? पहले खुद के देह में फंसाती है। आत्मा देह में है तो उसमें माया फंसाती है देह में। तो देह में जब फंसाती है तो देह अभिमान बहुत आ जाता है। फिर दूसरे के देह में भी फंसाती है तो क्या हो जाता है? फिर नाम रूप में फंस जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत माया से सावधान रहना है। और फिर जब फंसाती है माया तो फिर क्या होता है? बहुत पाप करते हैं, पाप के भागीदार भागी बन जाते हैं। और फिर उसका परिणाम क्या है? वो सजाएं मिलती है। तो इसीलिए माया से सदा खबरदार रहना है, कदम कदम पर ध्यान रखना है कि कहीं माया का वार तो नहीं हो रहा है। और उसके लिए क्या करना होगा? हम बाबा से जो हमने प्रतिज्ञा की है कि बाबा तेरे संग ही मेरा योग होगा, तुम ही मेरे सब कुछ हो, सर्व संबंध तुम्हारे साथ है, वो बार बार याद करो कि मेरा सब संबंध एक बाबा के साथ है। हाथ काट दे दिल, हाथों से काम करो पर बुद्धि बाबा के तरफ ही हो, क्योंकि माया पछाड़ती है, माया आकर्षित करती है, इसलिए उस आकर्षण में नहीं आना। तो बच्चों को आज बाबा ने बहुत सावधान किया है। और शिवरात्रि आ रही है 26 फरवरी को, तो बाबा ने शिवरात्रि के लिए भी विशेष क्या करना है, कैसे बाबा का संदेश देना है, वो भी स्पष्ट किया है। तो सुनते बाबा के माँ वाक्य। आज 9/1/2025 है। मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। कौन सा पुरुषार्थ करना है? विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है, ये पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तुड़वाने की कोशिश करती है? धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तुड़वाने की कोशिश करती है? जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो हम प्रतिज्ञा करते हैं ना बाबा से, तो वो कौन सी प्रतिज्ञा और वो कैसे माया तोड़ती है, तुड़वाती है? उत्तर है, तुमने प्रतिज्ञा की है क्या कि कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे? ये प्रतिज्ञा सभी ने की है जरूर, तभी तो बाबा के ऊपर कुर्बान हुए हैं। तुमने प्रतिज्ञा की है कि कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। तो आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सब का संन्यास कराते हैं, उसके मोह का जो मोह पड़ जाता है अपनी देह में या दूसरे की देह में, बाबा उसका संन्यास कराते हैं। परंतु माया ये प्रतिज्ञा तुड़वाती है, देह में लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं क्या होगा उसका, उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती है। देह में लगाव हो जाता है, जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती है। प्रतिज्ञा तोड़ी तो सजाएं तो मिलेगी ना। कहा जाता धर्त पर ये धर्म न छोड़िए, प्राण जाए पर प्रण न जाए, ये रघुवीर रीत सदा चली आई। तो हम बाबा के बच्चों के लिए ये तो बहुत बड़ी शक्ति है जो हम प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम शांति। ऊंच से ऊंच भगवान की महिमा भी की है और फिर ग्लानी भी की है इस गीत में होगा। हाँ, तुम ही दुख देते हो सुख देते हो, तुम ही सब करते हो, तुम क्या क्या हो, सब महिमा भी बहुत की है फिर वो ग्लानी भी की है। अब ऊंच से ऊंच बाप खुद आकर परिचय देते हैं और फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो अपनी ऊंचाई दिखाते हैं। तो जब रावण राज्य शुरू होता है तो अपनी ऊंचाई दिखाते हैं, क्या भगवान भी अपनी ऊंचाई दिखाते हैं ना, तो खुद बाप आकर परिचय देते हैं और फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो अपनी ऊंचाई दिखाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है, भक्ति मार्ग में भक्ति का ही राज्य है, इसीलिए कहा जाता है रावण राज्य। वो राम राज्य, ये रावण राज्य, राम और रावण की ही भेंट की जाती है। अब कौन सा राम, वो त्रेता वाला राम से भेंट नहीं है रावण की, परंतु कौन से राम से रावण की भेंट है, शिव परमात्मा से। बाबा के बच्चे बनते हैं, शिव बाबा के बनते हैं तो रावण फिर धोखा देती है, देता है। तो बाबा के राम और रावण की भेंट की जाती है। बाकी वो राम तो त्रेता का राजा हुआ, उनके लिए नहीं कहा जाता है राम और रावण की भेंट। रावण है आधा कल्प का राजा और राम आधा कल्प का राजा नहीं बनता है। राम तो अभी आता है संगम पर, तो रावण है आधा कल्प का राजा, ऐसे नहीं कि राम आधा कल्प का राजा है, नहीं। शिव बाबा तो अभी आते हैं, चलो त्रेता वाला राम तो वो एक ही, वो त्रेता में ही आता है, वही उसका राज्य है, नहीं। तो ये डिटेल में समझने की बातें हैं कौन सा राम। बाकी वो तो बिल्कुल सहज बात है समझने की, कौन सी बात सबसे सहज है, हम सब भाई भाई है, ये बात समझना मुश्किल नहीं है। पर कौन सा राम और रावण क्या, ये थोड़ा समझना पड़ता है। हम सब भाई भाई हैं, हम सबका वो बाप एक निराकार है, बाप को मालूम है इस समय हमारे सब बच्चे रावण की जेल में है। काम चिता पर बैठ सब काले हो गए हैं, ये बाप जानते हैं। आत्मा में ही सारी नॉलेज है ना, इसमें भी सबसे जास्ती महत्व देना है, शरीर को नहीं, माया शरीर में नहीं है, आत्मा में है। तो रावण आत्मा को पकड़ता, आत्मा को घेरता है, तो इसमें भी सबसे जास्ती महत्व देना है आत्मा और परमात्मा को जानने का। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नूंधा हुआ है जो बजाती रहती है, दे अभिमान में आकर पाट बजाते हैं तो स्वधर्म को भूल जाते हैं। दे अभिमान में आए और फिर जो भी कर्म करेंगे वो तो पाप के खाते में जाएगा, तो आत्मा का स्वधर्म तो भूल गया, मन अशांत हो जाता है, तो शांति मेरा स्वधर्म ये भूल जाते हैं। दे अभिमान में आकर पाठ बजाते हैं तो स्वधर्म को भूल जाते हैं। अब बाप आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं, क्योंकि आत्मा ही कहती है, क्या कहती है आत्मा, कि हम पावन बने। तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो, आत्मा पुकारती है हे परम पिता, हे पतित पावन, हम आत्माएं पतित बन गई है, आकर हमें पावन बनाओ। ये पुकारती है आत्माएं परमात्मा को। संस्कार तो सब आत्मा में है ना, आत्मा साफ कहती है, साफ कहती है, क्या कहती है, कि हम पतित बने हैं। इसीलिए आरती में भी यही कहती है ना, आरती में क्या कहते हैं, मैं मूर्ख खल कामी पापी। तो आत्मा खुद कहती है मैं पापी बनी हूँ, आकर हमें पावन बनाओ। संस्कार तो सब आत्मा में है ना, आत्मा साफ कहती हम पतित बनी है। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं, पतित मनुष्य। फिर पावन निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर मंदिर में उनकी महिमा गाते हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे तुम ही पूज्य देवता थे, जो राशि जन्म लेते लेते नीचे जरूर उतरना पड़े। ये खेल ही है, हाँ ये खेल ही है पतित से पावन, पावन से पतित होने का। सारा ज्ञान बाप आकर इशारे में समझाते हैं। अभी सबका अंतिम जन्म है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है, बाबा साक्षात्कार कराते हैं। पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर तो नहीं है ना। चलो न्याय नहीं मिल रहा है समय पर, अंत में तो मिलेगा ना सबको न्याय, क्योंकि भगवान तो न्यायकारी है। तो पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है। पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सजा देंगे, अंत के समय जब बहुत सजाएं हैं तो धर्मराजपुरी की सजाएं भी कैसी होगी, शरीर तो लेना होगा फिर सजाएं मिलती है। मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे, इसलिए शरीर जरूर धारण करना पड़ता है। अंत में आत्मा फील करती है हम सजा भोग रहे हैं, जैसे काशी करवट खाने समय दंड भोगते हैं, किए हुए पापों का साक्षात्कार होता है, तब तो कहते हैं ना क्षमा करो भगवान क्षमा करो। हम फिर ऐसा नहीं करेंगे, ये सब साक्षात्कार में ही क्षमा मांगते हैं, सजा भोगते हैं, बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है तो फिर क्षमा मांगते हैं भगवान, हे भगवान क्षमा करो क्षमा करो। फील करते हैं दुख भोगते हैं। सबसे जास्ती महत्व है आत्मा और परमात्मा का, आत्मा और परमात्मा का यही तो खेल है ना। कोई आत्मा परमात्मा कोई हटा दे तो बाकी क्या, फिर ये ज्ञान तो कोई समझ ही न सके उसमें आत्मा परमात्मा न हो तो। तो आत्मा और परमात्मा का ही जास्ती महत्व है। आत्मा ही 84 जन्मों का पाठ बजाती है, तो आत्मा सबसे पावरफुल हुई ना, कितनी पावरफुल, 84 जन्मों का पाठ बजाती है आत्मा। सारे ड्रामा में महत्व है ही आत्मा और परमात्मा का, जिसको और कोई भी नहीं जानते, एक भी मनुष्य नहीं जानता है कि आत्मा क्या है परमात्मा क्या है। बाकी दुनिया की सब बातें जान ली है, लेकिन आत्मा क्या है परमात्मा क्या है ये कोई नहीं जानता है। ड्रामा अनुसार ये भी होना है, न जानना भी ड्रामा अनुसार ही होना है, क्योंकि तभी तो परमात्मा आए और आकर के आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दे। तो तुम बच्चों को भी ज्ञान है कि ये कोई नई बात नहीं है, आत्मा का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान परमात्मा ही देते, ये कोई नई बात नहीं है। कल्प पहले भी ये चला था, जो भी संसार में हो रहा है वो कल्प पहले भी चला था, कुछ भी नई बात नहीं है। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाबा ने इन साधुओं आदि का संग बहुत किया हुआ है ना, 12 गुरु किए बाबा ने, कोई कम थोड़ी होगा, तो कितने साधु संतों का संग किया होगा। सिर्फ नाम ले लेते हैं, हाँ और क्या करेंगे, बाबा के नाम लेते हैं। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं, तो पुरानी दुनिया से जरूर वैराग्य करना पड़े। हम जा रहे हैं इस दुनिया से, तो इस दुनिया के साथ मोह कैसे होगा, तो जाना है तो जरूर वैराग्य करना पड़े। इनसे क्या दिल लगानी है, तुमने प्रतिज्ञा की है कि कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। देह से देह के सब संबंधों को भूलना है, तो ये प्रतिज्ञा की है तो अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सब का संन्यास कराते हैं, फिर औरों की देह से हम लगाव क्यों रखें? मेरी देह से अपनी जो देह है जो सदा है साथ में, उनसे ही बाबा कहते लगाव नहीं रखो, तो दूसरों की देह से लगाव कैसे रखेंगे, क्यों रखेंगे? कोई से लगाव होगा तो उनकी याद आती रहेगी, जरूर होगा ना, लगाव होगा तो मन बुद्धि वहां खींचती हुई चली जाएगी ना। तो बाबा कहते कोई से लगाव होगा तो उनकी याद आती रहेगी, फिर ईश्वर याद आ न सके। प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो सजा भी बहुत खानी पड़ती है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है, एक और सजा खाएंगे, दूसरी और फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए जितना हो सके बाप को ही याद करना है। माया तो बड़ी धोखेबाज है, कोई भी हालत में माया से अपने को बचाना है, कोई भी हालत में कैसे भी करके हम माया का वार हमारे ऊपर न लगने पाए, ये ध्यान रखना है। माया से अपने को बचाना है। देह अभिमान की बहुत कड़ी बीमारी है, तो बाप कहते हैं अब देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो तो देह अभिमान की बीमारी छूट जाए। देह अभिमान की बीमारी कब छूटेगी, जब बाबा की याद होगी। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं, बाप को याद बड़ा मुश्किल करते हैं। बाबा ने समझाया है हथ कारडे दिल यारडे, जैसे आशिक माशुक धंधा आदि करते भी अपने माशुक को ही याद करते रहते हैं। अब तुम आत्माओं को परमात्मा से प्रीत रखनी है तो उनको ही याद करना चाहिए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है हमको देवी देवता बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। माया धोखा तो जरूर देगी, इसलिए बाबा घड़ी घड़ी सावधान करते हैं, माया धोखा तो जरूर देगी, अपने को उनसे छुड़ाना है, उस धोखे में नहीं आना है माया के, अपने को उनसे छुड़ाना है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो फंस मरेंगे, फिर ग्लानि भी होगी। अब किसी के नाम रूप में फंस गए तो क्या होगा, उनको याद करेंगे, धीरे धीरे उसकी तरफ खींचते हुए चले जाएंगे, फिर तो बाबा की ग्लानि होगी ना। तो फिर बाबा कहते नहीं तो फंस मरेंगे, फिर ग्लानि भी होगी, नुकसान भी बहुत होगा, खुद का ही कितना नुकसान होगा, सजाएं बहुत खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, नुकसान भी बहुत होगा। तो तुम बच्चे जानते हो, अब ये आत्मा परमात्मा की बात, उस दिन भी बाबा ने कहा था ना, बाबा तुमको तीसरा नेत्र किस लिए देते हैं तीसरा नेत्र, अपने आप को आत्मा समझ, बाबा जो है जैसा है उसी रूप में उनको देखना और याद करना, इसलिए ये तीसरा नेत्र है। हाँ, तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान वो तो ठीक है, तीसरे नेत्र से हम देखते हैं, लेकिन जो मुख्य है इस ज्ञान नेत्र काज की जो कमाल, जो हम आत्मा समझ बाप को याद करते, आत्मा को ही देखते हैं, परमात्मा को ही देखते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्मा बिंदी है, हमारा बाप भी बीज रूप नॉलेजफुल है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। आत्मा क्या है, उसमें कैसे अविनाशी पाठ भरा हुआ है, इन गुह्य बातों को अच्छे बच्चे भी पूरी तरह नहीं समझते हैं, भूल जाते हैं। अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझे और बाप को भी बिंदी मिसल समझ याद करे। कैसे याद करे? बिंदी मिसल, बिंदी में ही ज्ञान है, बिंदी में ही सारे गुण हैं, बिंदी में ही सारी शक्तियां हैं, वो ज्ञान का सागर है, वो बीज रूप है। ऐसा समझ बड़ी मुश्किल से याद करते हैं, बड़ी मुश्किल से उस रूप से याद करते हैं, मोटे ख्यालात से नहीं। इसमें तो महीन बुद्धि से काम लेना होता है। मोटे ख्यालात क्या होते हैं? हाँ मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, हाँ बाबा बाबा करते रहते। पर बाबा कहते हैं मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, उसी रूप से जानना, समझना और फिर याद करना है। तो मोटे रूप से नहीं, इसमें महीन बुद्धि से काम लेना होता है। हम आत्मा है, हमारा बाप आया हुआ है, वो बीज रूप नॉलेजफुल है, हमको नॉलेज सुना रहे हैं। धारणा भी मुझ छोटी सी आत्मा में होती है, मुझ छोटी सी आत्मा में ही सारे ज्ञान की धारणा होती है। ऐसे बहुत हैं जो मोटी रीति सिर्फ कह देते हैं, मोटे रूप से कह देंगे आत्मा और परमात्मा, लेकिन यथार्थ रीति बुद्धि में आता नहीं है। ना से तो मोटी रीति याद करना भी ठीक है, आत्मा परमात्मा बिल्कुल बुद्धि में न आए, उसे तो भले मोटे रूप में बुद्धि में आए तो भी बाबा कहते हैं ठीक है, लेकिन जाना तो महीनता में है ना। नहीं, ना से तो मोटी रीति याद करना भी ठीक है, परंतु वो यथार्थ याद जास्ती फलदायक है। बिंदु समझ, उस बिंदु में सिंधु को देखना और उसी को याद करना, बाबा कहते हैं ये यथार्थ याद ये फलदायक है, इससे विकर्म विनाश होंगे। वो इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे जो केवल मोटे रूप में हमें आत्माओं में बाबा की संतान मोटे रूप से केवल कहते हैं, वो बाबा कहते इतना ऊंच पद पा न सकेंगे। इसमें बड़ी मेहनत है। किसमें मेहनत है? बिल्कुल उस आत्मिक स्थिति में रहे और बाबा जो है जैसा है उसको उसी रूप से याद करे, तो उसमें बड़ी मेहनत है। मैं आत्मा छोटी सी बिंदु हूँ, बाबा भी इतनी छोटी सी बिंदु है, उनमें सारा ज्ञान है। ये भी यहाँ तुम बैठे हो तो कुछ बुद्धि में आता है। चलो बाबा की मुरली सुन रहे हो, योग में बैठे हो तो ये बात समझ में आती है, लेकिन चलते फिरते भी वो चिंतन रहे कि मैं आत्मा बिंदी हूँ और उस बिंदी को मैं बाबा, हाँ वो बाबा को मैं सामने लाऊं हर वक्त, तो ये चलते फिरते भी चिंतन रहे, सो नहीं होता। होता है हाँ, कितनों को होता है, यही तो मेहनत है। हाथ उठाओ देखो जो समझते हैं, हमको होता है ये अनुभव बिंदी और बिंदी। हाँ देखो थोड़े, अच्छा अभी हाथ उठा रहे धीरे धीरे। तो बाबा कहते हैं, अभी हम गए थे मधुबन निवासियों का क्लास कराने, वो नीचे बट्टी थी ना मानसरोवर में, तो उसमें भी सबसे पहला प्रश्न यही पूछा किसी ने, मधुबन के शांतिवन का एक भाई है, उसने पूछा बाबा ने कहा मैं तीसरा नेत्र आकर देता हूँ जिससे तुम आत्मा को भी यथार्थ रूप से समझते हो और परमात्मा जो है जैसा है उसी रूप में तुम देखते हो और याद करते हो, वो कैसे होता है ये आप उस पर समझाओ। तो देखो बाबा ने आज सुना दिया। तो बाबा कहते हैं तो कुछ लेकिन चलते फिरते वो चिंतन रहे, सो नहीं होता, भूल जाते हैं, सारा दिन वही चिंतन रहे, ये है सच्ची सच्ची याद। कोई सच बताते नहीं है कि हम कैसे याद करते हैं, चार्ट भल भेजते हैं परंतु ये नहीं लिखते हैं कि ऐसे अपने को बिंदी समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करता हूं। सच्चाई से पूरा लिखते नहीं है। भल बहुत अच्छी अच्छी मुरली चलाते हैं, हाँ ज्ञान बाप मुरली चलाते हैं, मतलब ज्ञान बहुत अच्छा अच्छा सुनाते हैं, परंतु योग बहुत कम है, देह अभिमान बहुत है, इस गुप्त बात को पूरा समझते नहीं, सिमरण नहीं करते हैं। याद से ही पावन बनना है, पहले तो कर्मातीत अवस्था चाहिए ना, क्योंकि कर्मातीत अवस्था में ये बात सहज होगी, तो पहले वो सहज करना है, तब तो याद ठहर सके, तब तो कर्मातीत भी बने। तो पहले तो कर्मातीत अवस्था चाहिए ना, वही ऊंच पद बाबा कहते पा सकते हैं। बाकी मुरली बजाने वाले तो ढेर है, लेकिन बाबा जानते हैं योग में रह नहीं सकते। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है, सहज इतना नहीं है, मासी का घर नहीं है, वो अल्पकाल के मर्तबे पाने के लिए कितना पढ़ते हैं। कोई आईएएस बनता है, आईसीएस ऑफिसर, बाबा कहते हैं सबसे बड़ा मर्तबा है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, सबसे बड़ा वो पद है, उसके लिए पढ़ाई इतनी ऊंची है, तो ऐसे थोड़ी बनते हैं, कितनी बार फेल होते हैं तब जाकर के वो आईएएस का एग्जाम पूरा दे पाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो अल्पकाल के मर्तबे पाने के लिए भी कितना पढ़ते हैं, सोर्स ऑफ इनकम अब हुई है, अब वो पढ़ाई से इतना सोर्स ऑफ इनकम होता है, आगे थोड़ी बैरिस्टर आदि इतना कमाते थे, हाँ पहले तो इतने अपराध भी कहाँ होते थे, अभी तो देखो कहते करोड़ों केस कोर्टों में पड़े हुए जिनका अभी तक कोई फैसला ही नहीं हुआ है, चलता रहता है, और जो वकील लोग हैं वो तो खूब कमाते रहते हैं, तो कमाई कितनी है, पहले इतनी नहीं होती थी वकीलों की कमाई, अभी वकील और डॉक्टर सबसे जास्ती कमाते हैं, है ना, क्या क्या नहीं उनको, क्या नहीं वो लेते हैं। तो बाबा कहते आगे थोड़ी बैरिस्टर आदि इतना कमाते थे, अभी कितनी कमाई हो गई है उनकी। बच्चों को अपने कल्याण के लिए एक तो अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीति बाप को याद करना है, हाँ पहला तो ये काम करना है, अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीति बाप को याद करना है, और दूसरी बात त्रिमूर्ति शिव का परिचय औरों को भी देना है। अब शिवरात्रि पर क्या करना है बाबा ने बताया, तो त्रिमूर्ति शिव का परिचय औरों को भी देना है। सिर्फ शिव कहने से समझेंगे नहीं, बस कह दिया परमात्मा का नाम शिव है, बस ऐसे कह दिया तो समझेंगे नहीं, त्रिमूर्ति तो जरूर चाहिए, क्या करते हैं शिव परमात्मा जरूर ये बताना चाहिए। मुख्य है ही ये दो चित्र, कौन सा, त्रिमूर्ति गोला वो एक चित्र में और दूसरा झाड़। सीढ़ी में भी झाड़ से जास्ती नॉलेज है, झाड़ में फिर भी और धर्मों का है, पर सीढ़ी में आत्मा कैसे अलग अलग स्टेजेस से गुजरती है, भक्ति कैसे फैलती है, वो फिर सारी बातें सीढ़ी में है। तो सीढ़ी से भी झाड़ में जास्ती नॉलेज है, क्योंकि सभी धर्मों का उसमें है, सीढ़ी में फिर सभी धर्मों का नहीं है, तो इसलिए त्रिमूर्ति गोला और झाड़। बाबा कहते हैं ये दो चित्र बहुत मुख्य है, ये चित्र तो सबके पास होने चाहिए, एक तरफ त्रिमूर्ति गोला और दूसरे तरफ झाड़, ये पांडव सेना का फ्लैग होना चाहिए। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा फ्लैग होना चाहिए, झंडा होना चाहिए। ड्रामा और झाड़ की नॉलेज भी बाप देते हैं, लक्ष्मी नारायण विष्णु आदि कौन है ये कोई समझते नहीं है, महालक्ष्मी की पूजा करते हैं समझते हैं लक्ष्मी आएगी, फिर लक्ष्मी किसको समझ लेते हैं, धन को समझ लेते हैं ना, तो समझते लक्ष्मी आएगी, अब लक्ष्मी को धन कहाँ से आएगा, बिगर नारायण लक्ष्मी धन कहाँ से लाएगी, इसीलिए हाँ बिगर अब लक्ष्मी को धन कहाँ से आएगा, इसीलिए खाली लक्ष्मी की पूजा नहीं करते पर चार भुजा वाली महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो महालक्ष्मी कौन हो गई, चार भुजा वाली बना, नारायण भी उसमें उसके साथ है। तो बाबा कहते हैं चार भुजा वाले, आठ भुजा वाले भी कितने चित्र बना दिए हैं, समझते कुछ भी नहीं। आठ दस भुजा वाला तो कोई मनुष्य होता ही नहीं है, आठ दस भुजाएं कैसे संभालेगा कोई व्यक्ति। तो आठ दस भुजा वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं, जिसको जो आया सो बनाया, बस चल पड़ा। कोई ने मत दी कि हनुमान की पूजा करो, बस चल पड़ा। दिखाते हैं संजीवनी बूटी ले आया, बजरंग बली था, हाँ इतना शक्तिशाली था। तो वो बूटी लेने के लिए, संजीवनी बूटी लक्ष्मण को सुनाने के लिए चला गया हिमालय। उसको समझ में नहीं आया कि कहाँ है, कौन सी है संजीवनी बूटी, तो सारा हिमालय ही ले आया। देखो बाबा कहते हैं उसके लिए क्या है, बताते हैं। तो बाबा कहते हैं संजीवनी बूटी ले आया, उसका भी अर्थ तुम बच्चे समझते हो, कौन सी है संजीवनी बूटी। हम सब हनुमान है ना, सबको संजीवनी बूटी देते हैं, तो कौन सी संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी है मन मनाभव, सबको याद दिलाओ तुम कौन हो, किसको याद करो, तो संजीवनी बूटी होगी, तो आत्मा जागृत हो जाएगी, सुजाग हो जाएगी। अब माया ने उनको बेहोश कर दिया। तो संजीवनी बूटी तो है मन मनाभव, तो विचार किया जाता है जब तक ब्राह्मण न बने, बाप का परिचय न मिले, तब तक वर्थ नॉट अ पेनी है, कोई काम का नहीं है। जब तक वो ब्राह्मण न बने और बाप का परिचय उसको न मिले, मर्तबे का मनुष्यों को कितना अभिमान होता है, कोई भी मर्तबा मिल जाए यहाँ अभिमान होता है उसका। उनको तो समझाने में बड़ी मुश्किल आती है, बहुत बड़े मर्तबे वाले होते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है, तो मुश्किलात होती समझाने में। राजाई स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है, अब वो है बाहुबल, ये है योग बल। ये बातें शास्त्रों में तो है नहीं, वास्तव में तुम कोई शास्त्र आदि रिफर नहीं कर सकते हो। मिसाल देते हैं कि भाई देखो, पहले ज्ञान देंगे, ज्ञान दे करके फिर मिसाल देंगे, देखो ये शास्त्र में भी है, पर पहले वो मिसाल दे करके फिर ज्ञान देना नहीं, पहले ज्ञान देना है। तो इसलिए बाबा कहते उनको रिफर करके नहीं तुम ज्ञान देते, तो भगवान का जो दिया हुआ ज्ञान है वो आप सुनाते हो, तो कोई शास्त्र आदि रेफर नहीं करते हो। अगर तुमको कहते हैं, लोग हमसे पूछते हैं ना, तुम शास्त्रों को मानते हो, शास्त्रों को मानते हो, तो बोलो हाँ ये तो सब भक्ति मार्ग के हैं, हमने तो 63 जन्म पढ़े हैं ना ये शास्त्र, तो मानते क्यों नहीं है, ठीक है भक्ति मार्ग के हैं, पर अभी हम ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, अभी हमको इन सबका ज्ञान है, इन सबका सार पता है, अभी हम ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर एक ही बाप है, इनको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। रूह बैठ रूहों को ज्ञान देते हैं, वो परम रूह हम रूहों को ज्ञान देते हैं, फिर हम रूह और रूहों को ज्ञान देते हैं। ये मनुष्य वो तो मनुष्य मनुष्य को देते हैं, क्योंकि अपने को आत्मा थोड़ी समझते है, देह ही समझते है, तो समझते देह है तो देह को ज्ञान देते हैं, पर हम क्या समझते है, मैं आत्मा रूह, रूह को समझाती हूँ, आत्मा को समझाती हूँ, वो मनुष्य मनुष्य को देते हैं। मनुष्य कभी स्पिरिचुअल नॉलेज दे न सके, रूहानी ज्ञान केवल रूहानी बाप देता है, और जो रूह समझ के दूसरों को रूह देखते हैं वो ही दे सकते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन लिबरेटर सदगति दाता एक ही बाप है, तो बाप समझाते रहते हैं ये करो। अब शिव जयंती आ रही है, अब देखिए शिव जयंती पर कितना धम चक्र मचाते हैं, क्या सेवा करते हैं शिव जयंती पर। ट्रांसलाइट के चित्र छोटे भी हो जो सबको मिल जाए, ट्रांसलाइट के शिव बाबा के चित्र सबको मिल जाए, चित्र तो देते हैं ना, सबको देते हैं, शिव बाबा के बड़े चित्र देते हैं। तुम्हारी तो है ही बिल्कुल नई बात, कोई समझ न सके, खूब अखबारों में डालना चाहिए, आवाज करना चाहिए, सेंटर्स खोलने वाले भी ऐसे चाहिए जो खूब आवाज करे। अभी तुम बच्चों को ही इतना नशा नहीं चढ़ा हुआ है, अभी तो बहुत नशा चढ़ता है शिवरात्रि पर, कितनी धूम मचाते ब्राह्मण बच्चे, अभी तुम बच्चों को इतना नशा नहीं चढ़ा हुआ है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं फिर समझाते हैं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना, अभी तो बहुत ढेर है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अच्छा कई लोग क्यों मूंझते हैं, कहेंगे ये इसको ब्रह्मा क्यों कहते हो, बस सारी बात की मूंझाइश इसी में, इसको ब्रह्मा क्यों कहते हो। अच्छा चलो हम ब्रह्मा का नाम निकाल देते हैं। कई बार तो बाबा कहते तुमको डाले यहाँ, हाँ तो नहीं 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 हमको नहीं डाला, हम थोड़ी ब्रह्मा। अच्छा तुम इनको कहेंगे अच्छा ब्रह्मा का नाम निकालो, तो ब्रह्मा का निकाल कोई का तो नाम डालेंगे ना। अच्छा चलो ब्रह्मा को नहीं डालते, राधे कृष्ण का नाम डाल देते हैं यहाँ। अच्छा फिर राधे कृष्ण का नाम डालो मानो, अच्छा फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आएगी, फिर वो तो कृष्ण कुमारियां हो जाएगी। अब कृष्ण तो खुद ही कुमार है, उनकी कुमारियां कहाँ से आएगी। तो ब्रह्मा तो पिता है ना, रचयिता है, तो इसीलिए ब्रह्मा जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा चाहिए ना जो मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां रचे, तो वो ब्रह्मा चाहिए, तो बुजुर्ग चाहिए। बच्चे आगे चलकर बहुत समझेंगे, खर्चा तो करना ही पड़ता है, जो जितनी सेवा करेंगे खर्चा तो होता ही है ना, वो तो करना पड़ता है। चित्र तो बड़े क्लियर है, लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, बाबा को वो चित्र तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे सर्विसेबल आज्ञाकारी फरमान बरदार नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरा स्वयं को माया के धोखे से बचाना है, कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना है, कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है, देह अभिमान में नहीं आना है। वरदान ब्रह्म मुहूर्त के समय, अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्म लोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं, साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट न हो, तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। अमृत वेले में हाँ वृत्ति एकदम बदली हुई होती है, इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो अमृत वेले। स्लोगन क्रोध का काम है क्रोध करना, क्रोधी का काम है क्रोध करना, और हमारा काम क्या है, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। क्रोधी क्रोध करे और आप उनको स्नेह दो, हो सकता है ऐसे, हमारी दादियां तो ऐसे ही थी। मुझे हमको याद है यीशु दादी के पास कोई गया तो यीशु दादी से बहुत जोर जोर से बोलने लगा, बहुत बहुत पता नहीं किस बात की कोई बात होगी, दादी ने उनसे पूछा होगा हिसाब, अब वो कुछ होगा गड़बड़, तो दादी तो बहुत गुस्सा करने लगा जैसे कि मेरी बात छिप जाए। लेकिन दादी ने इतना प्यार से बोला, मिठरा हाँ मीठे, हाँ मिठास, मैं आपसे धीरे से पूछ रही हूँ, आप प्यार से उत्तर दो। हाँ गुस्सा हो गया उसको, क्योंकि अंदर तो मन खाता होगा ना, लेकिन दादी इतना प्यार से उसको सुनाती, इसलिए कि वो गुस्सा है तो दादी भी गुस्सा करे नहीं। ऐसे हमारी बहुत दादियाँ थी, एक कला दादी थी बॉम्बे में, हाँ मिठरे मिठरा मिठरा, ऑलराउंडर दादी थी, ऑलराउंडर दादी कहती लाल लाल, कितना भी कोई उसको कहे लाल लाल, इतना प्यार देती थी। तो देखो क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अब स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में सकाश आपे ही मिलती रहे। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में यह पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। बाबा भी हर बच्चे को अति स्नेह है, तो इसलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। आज का तो विस्तार से बताया है, आज का स्वमान है मैं ब्रह्मा बाप समान हूँ, मैं ब्रह्मा बाप समान हूँ। योग अभ्यास क्या करो, मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान महायोगी महा तपस्वी हूँ, अव्यक्त वतन वासी फरिश्ता हूँ, मास्टर पालनहार बन बाप से मिली हुई शक्तियों से सर्व को सकाश देने की सेवा कर रही हूँ। और धारणा क्या करो, बाप समान बनकर ही दिखाएंगे, पक्का वायदा करो। चिंतन है स्व कल्याण में विश्व कल्याण कैसे समाया हुआ है, इसमें इसका चिंतन करो। डबल विदेशी, अच्छा ओम शांति, अभी भोग लगेगा। डबल विदेशी भी कुछ आ गए हैं, कल उनको देखा ज्ञान सरोवर में, तो काफी डबल विदेशी आ गए हैं, लेकिन